नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सीएसआर कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे, जिसका विषय है पोषण सुरक्षा और कुपोषण उन्मूलन में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका। सम्मेलन का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण से लड़ने के लिए मिलकर काम करने वाली प्रगतिशील और टिकाऊ रणनीतियों पर चर्चा करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद ये मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आशा का अनहद नाद है।
अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक नए संकल्प के साथ एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, एक ऐसा भारत जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। जय सोमनाथ।
गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। तिरुचि में एक बैठक में उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके की विफलताओं को राज्य की जनता के सामने लाने और भ्रष्ट मंत्रियों को बेनकाब करने को कहा। उन्होंने राज्य की वर्तमान सत्ता को चुनौती देने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए AIADMK के नेताओं के साथ भी चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO को कर्मचारी भविष्य निधि योजना EPFS के तहत वेतन सीमा में संशोधन पर 4 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पिछले 11 वर्षों से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि वेतन सीमा में कोई बदलाव न होने की वजह से श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग ईपीएफओ के दायरे से बाहर रह गया है। ईपीएफएस एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया के उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा विकसित 41 साहित्य कृतियों का विमोचन करेंगे। ये कृतियां केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के अंतर्गत विकसित की गई हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान द्वारा प्रकाशित 13 पुस्तकों के साथ साथ तिरुक्कुरल की 45 एपिसोड की सांकेतिक भाषा व्याख्या श्रृंखला का भी विमोचन किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वो हाल के घटनाक्रम को देखते हुए अगली सूचना तक ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचें। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को सावधानी बरतने और विरोध प्रदर्शन वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के कार्यकारी निदेशक फातेह बेरोल से मुलाकात की। इस मुलाकात में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य और भारत की विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर 4 से 10 जनवरी तक फ्रांस और लग्जमबर्ग की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं, जिसका मकसद दोनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत 12 और 13 जनवरी को आएंगे। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा रहेगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस यात्रा के दौरान वे अहमदाबाद और बेंगलुरु भी जाएंगे। बेनोनी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 8 विकेट से पराजित कर दिया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। We'll be right back.